Hare Krishna. Om Agyanati Mirandhasya Gyananjana Shalakaya Chakshurun Militang Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Mano Bhishtang Sthapitang Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamaiham Dadati Swapadantikam Bandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tvam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakhanitamscha He Krishna Karuna Sindho Dinavandho Yagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Bancha Kalpa Tarubhascha Kripa Sindhu Bhayevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vashadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna, Hare 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 Rama, Hare Rama Rama Rama, Hare 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 Krishna हमारा ये द्वितीय सेमिनार है. प्रथम सेमिनार हुआ था ब्रह्म संहिता के ऊपर और आज का सेमिनार होगा बृहत भागवतामृतम के ऊपर. बृहत भागवतामृतम का दो खंड है, दो भाग है, पूर्व विभाग और उत्तर विभाग. तो हम इस बार, इस समय, ये तीन दिन हम बृहद भागवतामृतम का पूर्व विभाग का विचार करेंगे और अगला महीना हम उत्तर विभाग का विचार करेंगे या उत्तर विभाग के ऊपर सेमिनार होगा। मैं बृहद भागवतामृतम क्यों चुना? पहले मैं सोचा था कि इस सेमिनार होगा ईशो उपनिषद के ऊपर। ईशो उपनिषद उपनिषदों में से प्रधान माना गया है, क्योंकि इस उपनिषद में भगवान की वर्णन बहुत सरल और सही रूप से हुआ है। पर बाद में मैं विचार किया कि शायद ईशो उपनिषद समझने में कठिन हो सकता है। ईशो उपनिषद का विषय थोड़ा कठिन हो सकता है, तो इसलिए मैं बृहद भागवतामृतम को चुना, क्योंकि बृहद भागवतामृतम एक कहानी है। कहानी के माध्यम जब ज्ञान का वर्णन होता है, प्रदान होता है, वो थोड़ा बहुत सरल हो जाता है। ये आप देखेंगे, ये जो कहानी है, ये कहानी के माध्यम या कितना सुंदर रूप से हमारे जो वेदों का जो मर्म का उद्धार हुआ है। वेद का असल उद्देश्य क्या है, वैदिक ज्ञान का मुख्य विषय क्या है, ये बहुत सुंदर रूप से बृहद भागवतामृतम में वर्णन हुआ है। जैसा कि वेद का पूर्ण विस्तार या विनाश और मर्मार्थ का वर्णन ब्रह्म संहिता में हुआ है। आप में से कौन ब्रह्म संहिता सेमिनार अटेंड किए थे? अच्छा, उस समय आप में से बहुत अधिक से अधिक व्यक्ति नहीं योगदान किया था उसमें, ठीक है, कोई बात नहीं। ब्रह्म संहिता देखिए, वेद का दो सार निचोड़ निकला गया है वेद का, एक भगवद गीता के रूप में और श्रीमद् भागवतम के रूप में। वेद विशाल है, ये वेद इतना विशाल है कि इसके कारण जब कलियुग शुरू होने वाला था तब व्यासदेव ने विचार किया कि इस वेद को असल उद्देश्य क्या है, अर्थ क्या है, ये कलियुग के मनुष्य ने समझ नहीं पाएंगे। उसलिए व्यासदेव ने वेद का विभाग किया सरल रूप से वेद का वर्णन करने के लिए। व्यासदेव वेद को चार भाग में विभाग किया, जैसे ऋग, साम, यजु, अथर्व। उसके बाद उन्होंने वेद का अनुजाई जो वेदांग और वेदांत, वेदांग के रूप में उपनिषद, पुराण, धर्मशास्त्र, संहिता और इतिहास का वर्णन किए थे। उपनिषद और पुराण, ये दो मूल शाखा है वेद का, और ये दो मूल शाखा का जो एकदम गूढ़ अर्थ, एकदम गंभीर भाव उसका, जो ये उपनिषद और ये पुराण का श्रेष्ठ रूप में प्रकाश हुआ है, उपनिषदों में है गीतोपनिषद या भगवद गीता, और पुराणों में भागवत पुराण। 108 उपनिषद हैं, उनमें से उसका जो मर्मार्थ है, सार निचोड़ जो है, वो है भगवद गीता। जिस तरह इसका वर्णन हुआ है, सर्व उपनिषदो गाबो, सारे उपनिषद है एक गाय जैसा। सर्व उपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन, और गाय के उस गाय को, उपनिषद रूपी गाय को दोहन कौन किया? गोपाल नंदन। गोपाल नंदन कौन है? श्री कृष्ण, जो गाय को पालन करते हैं। कौन सी गाय? उपनिषद रूपी जो गाय है, उस गाय को पालन करते हैं गोपाल कृष्ण, गोपाल नंदन। और वत्स पार्थ, उस गाय का वत्स या गाय का बछड़ा, जिस बछड़ा के निमित्त बनाकर गाय दूध देती है, वैसे ही उपनिषद रूपी गाय किसको निमित्त बनाकर भगवान ने उस गाय को दोहन किया? अर्जुन को निमित्त बनाकर। वत्स पार्थ और सुधीर भोक्ता, और उस दूध, उस गाय का दूध कौन पीते हैं? जो सुधी है, मतलब जिसका धी या बुद्धि या मनोभाव बहुत सुंदर है या यह श्रेष्ठ है, सुधीर भोक्ता। और यह दूध का क्या है? ये दुग्धामृतम महत, दुग्ध गीतां दुग्धामृतम महत। ये भगवद गीता जो है वे उस गाय का दूध है, गीता रूप अमृत। तो ऐसे हमें पता चलता है सारे उपनिषदों में श्रेष्ठ उपनिषद या सारे उपनिषदों का सार क्या है? भगवद गीता। और सारे पुराणों में वैसे ही हम विचार कर सकते हैं, निगम कल्पतरुर गलितं फलम सुकमुखाद अमृत द्रव संयुतम पीबत भागवतम रसमालयम मुहुरह रसिका भूवि भावुका। तो ऐसे ही सारे पुराणों में कौन से पुराण श्रेष्ठ हैं? जैसे निगम कल्पतरुर, निगम या वेद है एक कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष से हम जो कुछ मांगते हैं वही हमें प्राप्ति होता है। कल्प वृक्ष के पास जो कुछ हम मांगेंगे वही हमें मिल जाता है। तो जिस वृक्ष के पास जो कुछ हम मांगते हैं वही प्राप्त होते हैं, तो उस वृक्ष का फल कैसा होगा? तो वैसे निगम कल्प, उस कल्प वृक्ष का फल है ये श्रीमद् भागवतम। और तत्पश्चात ये श्रीमद् भागवतम सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम, सुखदेव गोस्वामी का मुखामृत से मिश्रित हुआ है। सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम, और इस भागवतम, इस भागवत रूप अमृत को कौन पीते हैं? मुहुरह रसिका भूवि भावुका, जो व्यक्ति रसिक है, अर्थात जो व्यक्ति रस क्या वस्तु है समझते हैं। ये कौन सी रस? ये अम्ल कषाय तिक्त मधुर नहीं रस, ऐसे रस नहीं है, ये प्रेम रस, भगवत प्रेम रूप रस को आस्वादन जो करने वाले हैं, उन्होंने मुहुरह रसिका भूवि भावुका, भक्ति भाव से आविष्ट होकर इस रस को उन्होंने ही आस्वादन करते हैं। तो ऐसे हम देखते हैं कि सारे पुराणों में श्रेष्ठ है श्रीमद् भागवतम। और भागवत क्या है? भागवत है भगवान का स्वरूप। भागवत का अर्थ क्या होता है? भगवान संबंधीय, या तो भगवान के साथ जो युक्त है, भगवान के विषय पर, या भगवान के साथ जो संबंध युक्त हुए हैं। अर्थात भागवत का अर्थ होता है भगवान का बारे में जो कुछ बताया गया है, और भगवान के भक्तों ने जैसे भगवान के प्रति भक्ति का प्रकाश किए हैं, ये है श्रीमद् भागवत। और असल में ये श्रीमद् भागवतम भगवान का ही स्वरूप है, भगवान से अभिन्न है। भागवत श्रीमद् भागवतम में द्वादश स्कंद है, और वो द्वादश स्कंद भगवान का ही शरीर जैसा है। पहला दो स्कंद, प्रथम द्वितीय स्कंद है भगवान का पैर, तृतीय और चतुर्थ स्कंद है भगवान का जंघा, पंचम स्कंद है भगवान का उदर, षष्ठ स्कंद है भगवान का वक्ष, सप्तम और अष्टम स्कंद है भगवान के दो भुजाएं, नवम स्कंद है भगवान का कंठ, दशम स्कंद है भगवान का हाश्वज्जल मुखारविंद, एकादश स्कंद है भगवान का कपाल, और द्वादश स्कंद है भगवान के मस्तक सिर। तो ऐसे इस द्वादश स्कंद में भगवान का ही स्वरूप का प्रकाश हुआ है। भगवान का 12 शरीर का 12 अंग है श्रीमद् भागवत। तो ये सारे अंग जब हमें दर्शन होता है, तो हम किसको दर्शन करते हैं? भगवान को दर्शन करते हैं। तो श्रीमद् भागवतम भगवान से अभिन्न है, और भगवान को जानने के लिए श्रीमद् भागवतम ही सबसे उत्तम सर्वश्रेष्ठ उपाय है। श्रीमद् भागवतम जैसा भगवान को जानने के माध्यम और कहीं भी नहीं है। अगर हम भगवान को जानना चाहते हैं, तो श्रीमद् भागवतम से ही हम भगवान को सबसे सर्वश्रेष्ठ रूप में दर्शन कर सकते हैं। भगवद गीता भी है, भगवद गीता भी भगवान को जानने के लिए एक महान शास्त्र है, क्योंकि भगवद गीता भगवान का ही वाणी है। भगवान स्वयं अपने बारे में बोल रहे हैं कि वे कौन हैं, हम कौन हैं, हमारे साथ उनका संपर्क कैसा है, और किस तरह हम उनके साथ हमारे संपर्क जोड़ सकते हैं, इसका वर्णन श्रीमद् भगवद गीता में हुआ है। परंतु भगवद गीता में भगवान स्वयं अपने बारे में कह रहे हैं। तो अगर भगवान अपने बारे में कह रहे हैं, तो देखिए, कोई व्यक्ति की अपने बारे में ज्यादा कुछ कह सकते हैं नहीं, शर्माते हैं, सोचते हैं क्या अपने बारे में कितना मैं बोलू, ये तो आत्म प्रशंसा हो जाता है। जो महान व्यक्ति हैं, वो अपने बारे में कुछ अधिक बोलना नहीं चाहते हैं, और जो महान व्यक्ति हैं भगवान, वो अपना प्रशंसा भी सुनना नहीं चाहते हैं। प्रशंसा सुनने में भी उनका शर्म आता है, संकोच करते हैं। इसे कहा गया है कि ये आत्म प्रशंसा इतना भारी है, ये इतना भारी वस्तु है कि ये जब सुनने से वो सर झुक जाता है, उसका भार इतना अधिक है कि उससे हमारा मस्तक नीचे गिर जाता है। जो महान है, उसका जो जिनका मनोभाव सही है, वो अपना प्रशंसा नहीं सुनना चाहते हैं। तो आप सोचिए, भगवान अपने बारे में कितना कह सकते हैं। इसलिए गीता में भगवान, देखिए भगवान कहना नहीं चाह रहा था, परंतु अर्जुन के कल्याण के लिए और हमारे कल्याण के लिए भगवान ये अपना कर्तव्य समझकर ये हमें सुनाए थे। कह रहे थे कि ये क्योंकि अगर तुम ये करोगे तो तुम्हारा ही कल्याण होगा, यही भगवान कहना चाहते थे। परंतु भगवान के बारे में अगर हम सही रूप से, गंभीर रूप से अगर हम समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो हमें श्रीमद् भागवतम का ही शरण लेना होगा। क्योंकि देखिए कोई व्यक्ति को अगर हम जानना चाहते हैं तो कैसे हम उनको सबसे सही रूप से पहचान सकते हैं, उनका मुख मुखारविंद दर्शन से। तो ऐसे प्रथम स्कंद से दसम स्कंद तक धीरे धीरे पैर से भगवान के मुख का दर्शन हुआ है। पैर जब देखते हैं हाँ, उससे संभ्रम आता है, महान व्यक्ति के पैर के सामने हम अपने आप को समर्पण करने का इच्छा होता है, परंतु उस व्यक्ति के बारे में उनका पैर देखकर हम उतना कुछ नहीं जान सकते हैं, परंतु जब हम उनका मुंह देखते हैं तो पता चल जाता है कि वो कौन है। तो भगवान कौन है ये अगर हम सही रूप से समझना चाहते हैं तो श्रीमद् भागवतम का दशम स्कंद की माध्यम ही हम समझ सकते हैं। तो इसीलिए श्रीमद् भागवतम ही भगवान का जानने के लिए श्रेष्ठ उपाय है। और देखिए ब्रह्म संहिता जो है, ब्रह्म संहिता भी जो मैं जिसके ऊपर मैं सेमिनार पहले दिया था, ब्रह्म संहिता भी ये श्रीमद् भागवतम का ही वर्णन है। मतलब भागवतम में जिसका वर्णन हुआ है, ब्रह्म संहिता में भी उसी का ही वर्णन हुआ है। उसीलिए मैं सबसे पहले ब्रह्म संहिता को चुना था। और आज हम बृहद भागवतामृतम चुने हैं सेमिनार के विषय के रूप में। क्यों? क्योंकि इसके नाम से ही पता चलता है ना। देखिए भागवतम, ये भागवतम ही है, परंतु कैसी भागवत है? बृहत, बृहत का मतलब बड़ा, विस्तृत। बृहत भागवत अमृत, भागवत रूप अमृत का विस्तृत रूप से जो वर्णन हुआ है वो है बृहद भागवत अमृत। बृहद भागवत अमृतम में वही वर्णन हुआ है जिसका वर्णन श्रीमद् भागवतम में हुआ है, परंतु बृहद भागवतामृतम में उसका विशेष रूप से विश्लेषण हुआ है। भागवतम में भागवतम का कहना क्या है, भागवतम में किस विषय में भागवत श्रीमद् भागवतम में ज्ञान प्रदान किया गया है, ये है बृहद भागवतामृतम का विषय और विस्तृत रूप में हुआ है, वही हम विचार करेंगे या उस विषय के ऊपर ही हम चर्चा करेंगे। देखिए भागवतम जो है वो भगवान का ही वर्णन है। नीचे माइक टेक्टिक ऑन कर देते हैं। बृहद भागवतम मृतम में भगवत भक्ति का वर्णन हुआ है। क्यों? क्योंकि श्रीमद् भागवतम में भी श्रीमद् भागवतम का मूल विषय वस्तु है भगवत भक्ति, और भगवत गीता में भी भगवत भक्ति ही उसका मूल विषय है। कभी कभी कोई आदमी सोचते हैं कि भगवत गीता का मूल विषय है कर्म योग, कोई बोलते हैं ज्ञान योग, परंतु भगवान क्या बोलते हैं भगवत गीता में, भगवत गीता में भगवान क्या बोल रहे हैं? भगवान नहीं बोलते हैं कि कर्मी हमें जान सकता है या ज्ञानी हमें जान सकता है। भगवान क्या बोलते हैं? भक्ता माम अभिजानाति, भक्त ही केवल और या भक्ति के द्वारा ही केवल हमें समझ सकते हैं, अभिजानाति, भक्ता माम अभिजानाति। भक्ति ही भगवत गीता का मूल विषय है, वैसे ही श्रीमद् भागवतम में भी भक्ति का ही वर्णन हुआ है। देखिए श्रीमद् भागवतम का प्रथम श्लोक में क्या वर्णन हुआ है, श्रीमद् भागवतम का प्रथम श्लोक में ही ये वर्णन हो रहा है कि धर्म प्रज्ञित, अच्छा, धर्म प्रज्ञित कोइतव अत्र परम निर्मत सरानाम सताम। सताम, ये सताम शब्द का अर्थ क्या है? जो सत है, साधु। साधु कौन है? जो दूसरे सारे धर्म को जो त्याग दिए हैं। जैसे भगवान भगवत गीता में भगवान का अंतिम उपदेश क्या था? सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। इसका अर्थ, इसका उद्देश्य क्या है इस श्लोक का, इसका अर्थ क्या है? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। इसका अर्थ ये है कि भगवान को शरण लेना ही एकमात्र धर्म है, और भगवान का शरण का अतिरिक्त इलावा जो कुछ चल रहा है धर्म के नाम में, वो धर्म नहीं है। भगवान के शरण के अतिरिक्त और कोई धर्म नहीं है, इसलिए भगवान कह रहे हैं कि सर्व धर्मान परित्यज्य, मेरा शरण बिना लिए बिना और जो कुछ हो रहा है वो सारे त्याग दो, कि वो धर्म नहीं है। असल धर्म है मेरा शरण, शरणागति। और श्रीमद् भागवतम में भी देखिए, भगवद गीता का जो अंतिम श्लोक है, अंतिम उपदेश है, श्रीमद् भागवतम का वही है प्रथम उपदेश। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जो जहां भगवद गीता का समाप्ति हुआ है वहां से श्रीमद् भागवतम का शुरू हो रहा है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। और भगवत श्रीमद् भागवतम का उपदेश क्या है? धर्म प्रज्ञित कोइतव अत्र। प्रज्ञित मतलब, प्रज्ञित शब्द का अर्थ है प्रकृष्ट रूपेण उज्जित, उज्जित मतलब त्याग कर, प्रकृष्ट रूपेण बहुत सुंदर रूप से, बहुत सुंदर रूप से, अच्छा तरह। जब हम जितने सारे कैतव धर्म, कैतव का मतलब कपट, छल, जो असल में धर्म नहीं है परंतु उसे आदमी लोग धर्म कहकर समझ रहे हैं, सोच रहे हैं, वैसे धर्म को त्याग देना चाहिए। त्याग देने के पश्चात धर्म प्रज्ञित कोइतवात्र परम निर्मत सरानाम, निर्मत्सर, मत्सर, मात्सर्य। मात्सर्य क्या है? ईर्षा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य। सो ये मात्सर्य जब हम त्याग देते हैं, ये मात्सर्य त्यागना बहुत ही कठिन है। मतलब देखिए, मतलब काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये छह हैं। हाँ, इसका अंत में क्या, लास्ट कौन है? मात्सर्य। तो जब मात्सर्य हृदय से जब त्याग होता है, तब हमें समझना पड़ेगा कि बाकी सब का, बाकी सब का भी संशोधन हो गया है। तो निर्मत्सरानाम, निर्मत्सर मात्सर्य शून्य होने से हमारा हृदय निर्मल हो जाता है, तब हम साधु बनते हैं, तब हम वेदं वास्तवमत्र वस्तु, तभी केवल हम भगवान को पहचान सकते हैं। जब तक हमारा हृदय में मात्सर्य रहेगा, तब तक हम भगवान को पहचान नहीं सकेंगे। परम निर्मत्सरानाम सताम वेदं, वेदं का मतलब जानते हैं, हम जान सकते हैं। वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु, वास्तव वस्तु कौन है? परमेश्वर भगवान। वेदं वास्तवम अत्र वस्तु शिवदम तापोत्रयन उन्मूलनम, श्रीमद् भागवते महामुनि कृते, श्रीमद् भागवतम जो महामुनि व्यासदेव ने प्रदान किए हैं और सुखदेव का मुखारविंद से युक्त हुआ है। किंग बा परे ऋषर, इसके अलावा भगवान के जानने के और कोई क्या जरूरत है? सद्द हृदवरुद्धते अत्र कृति भी सुशुषु भी तत्क्षणात्, हमारा भवरोग का तब तत्क्षणात् उसी समय हमारा ये जो भवरोग उसका इलाज हो जाता है, जब हम भगवान को शरण लेकर ये श्रीमद् भागवतम का वाणी समझ लेते हैं। तो इसका अर्थ ये है कि श्रीमद् भागवतम भक्ति के द्वारा ही हम केवल उपलब्धि या भगवान को हम पहचान केवल भक्ति के द्वारा ही कर सकते हैं। इस ज्ञान कर्माद अनावृतम, ये शुद्ध भक्ति कैसी है, शुद्ध भक्ति का स्वरूप कैसी है? अन्नाभिलाषिता सुन्नम, अन्नाभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद अनावृतम। ज्ञान और कर्म, इसका आवरण उन्मोचन हो गया है, मतलब ज्ञान और कर्म के आवरण आच्छादन, ये शुद्ध भक्ति। और जब हमारे भगवान के प्रति हमारा जो भक्ति, वो जब ज्ञान और कर्म से अनावृत हो जाता है, तभी वो शुद्ध भक्ति बनता है। और इसके साथ साथ ये भी ये आता है, अर्थात क्या भक्ति में ज्ञान का अवकाश नहीं है? भौतिक ज्ञान का अवकाश नहीं है, परंतु आध्यात्मिक ज्ञान का अवकाश जरूर है। और वो ज्ञान कैसी है? वो ज्ञान स्वतः ही प्रकाशित हो जाता है। जैसे भक्ति देवी का दो पुत्र है, भक्ति देवी है माता और भक्ति देवी का दो पुत्र हैं। वो भक्ति देवी के वो दो पुत्र कौन है? ज्ञान और वैराग्य। अर्थात जहां मां जाते हैं, उनका बच्चे भी उनके साथ साथ जाते हैं। वैसे ही जहां भक्ति, जहां भगवत भक्ति जहां है, वहां ज्ञान और वैराग्य का प्रकाश स्वतः ही हो जाता है। वो ज्ञान कैसी है? दिव्य ज्ञान। ये ज्ञान दिव्य ज्ञान है, और उसका प्रकाश कैसे होता है? हृदय प्रकाशित। ये इस दिव्य ज्ञान का प्रकाश हृदय से होता है, मस्तक से नहीं। भौतिक ज्ञान मस्तक से, मस्तक भौतिक ज्ञान का ग्रहण और संग्रह मस्तक में होता है, परंतु आध्यात्मिक ज्ञान या दिव्य ज्ञान का स्थिति या प्रकाश कहाँ है? हृदय में। ऐसे ही इस दो ज्ञान का अंतर है। तो बृहद भागवतामृत में भक्ति का ही रूप स्वरूप और भक्ति का स्तर का वर्णन हुआ है। एक बहुत सुंदर दृष्टांत के माध्यम बृहद भागवतामृतम का सूचना हो रहा है। जब परीक्षित महाराज को सांप मिला था, आप सब जानते हैं, ब्राह्मण बालक श्रृंगी ने शमिक ऋषि के पुत्र श्रृंगी उनको सांप दिया था परीक्षित महाराज को कि 7 दिन के अंतर तक्षक के दंशन में उनका मृत्यु होगा। तो ये खबर मिलते ही परीक्षित महाराज गंगा के तट पर चले गए और प्रायोपवेशन में बैठे। प्रायोपवेशन में बैठे का बैठने का मतलब क्या है? उन्हें बैठ गए हैं और ये संकल्प किया कि आपसे मैं कुछ खाऊंगा नहीं, सोऊंगा नहीं, केवल मेरा केवल आध्यात्म चिंतन में मग्न रहूंगा। कैसे हमारा कल्याण होगा ये सोचते हुए मैं मृत्यु का प्रतीक्षा करूंगा। तो वैसे उन्होंने प्रायोपवेशन में बैठे गंगा के तट पर। यह खबर जगह जगह में फैल गया था कि राजा को ऐसा शाप मिला और परीक्षित महाराज कोई मामूली राजा नहीं थे। परीक्षित महाराज सारा भूमंडल का अधिपति थे। ये हिंदी में भी शायद इस शब्द का प्रयोग होता है, सा सागरा, सागर के सहित ये पृथ्वी का अधीश्वर थे। केवल भूखंड का ही नहीं, सागर का भी अधिपति थे। सागर सहित समग्र पृथ्वी का अधीश्वर थे परीक्षित महाराज। तो महाराजा का ऐसे सांप मिला, 7 दिन के अंदर उनका मृत्यु होगा। तब ये खबर मिलते ही परीक्षित महाराज ने संकल्प किया कि मैं वहां जाके मृत्यु का प्रतीक्षा करूंगा गंगा के तट पर। आप जानते हैं भारत में ये जानकारी है सबको कि गंगा के स्पर्श और गंगा के सान्निध्य में मृत्यु होने से आत्मा का सद्गति हो जाता है, आत्मा का उद्धार हो जाता है। उसके कारण गंगा के तट, कोई व्यक्ति मृत्यु के पूर्व गंगा के पास चले जाते हैं, हमें पता नहीं है यहाँ होता है या नहीं। बंगाल में एक ये है कि अंतरजाली यात्रा, मृत्यु के पूर्व ये शरीर को गंगा के जल में ये डाल देते हैं, आधा शरीर पानी में रहता है, आधा शरीर बाहर रहता है, उस स्थिति में मृत्यु को वरण करते हैं। तो ऐसे हमें मालूम है कि गंगा के स्पर्श मिलते हुए अगर मृत्यु होता है तो आत्मा का सद्गति हो जाता है। उसके कारण गंगा के पास जाकर मृत्यु की प्रतीक्षा करना हमारा संस्कार है और गंगा के पवित्र स्पर्श मृत्यु के बाद मिलने से भी आत्मा का सद्गति होता है। उसीलिए गंगा के तट पर शरीर को जलाया जाता है। तो परीक्षित महाराज ऐसे गंगा के तट पर चले गए थे। गंगा और जमुना में तो कोई अंतर नहीं, गंगा जमुना एक ही है, दोनों ही महा पवित्र भगवान का ही संगिनी है। तो परीक्षित महाराज का ये मृत्यु का संवाद, मतलब मृत्यु का प्रतीक्षा का संवाद मिलते हुए मिलने से सारे महात्माओं ने, मुनि ऋषियों ने, बड़े बड़े आध्यात्मवादी सब कुछ सब वहां आ गए थे और परीक्षित महाराज को उपदेश देना देने लगे क्या करना चाहिए अब। परंतु परीक्षित महाराज का वो सारे उपदेश जो ज्ञान और कर्म के ज्ञान और ज्ञान की और कर्म के ऊपर प्रतिष्ठित था, उनका मन का प्रसन्नता विधान नहीं किया। तब उस वहां सुखदेव गोस्वामी का आगमन हुआ। सुखदेव गोस्वामी जो व्यासदेव के पुत्र थे, और सुखदेव गोस्वामी को देखते हुए ही सब खड़े हो गए, क्योंकि सबको पता चला कि ये उनको शरीर उनका उनको देखते ही सबको पता चला कि ये एक बहुत महान ये एक बहुत महात्मा है, बहुत बड़े महात्मा है, ये नित्य सिद्ध महापुरुष है। तब सुखदेव गोस्वामी के पास परीक्षित महाराज भगवत तत्व ज्ञान श्रवण करने का अनुरोध किया। भगवान का महिमा, भगवान के बारे में सुनने का संकल्प करके उनके पास अनुरोध किया। तो सुखदेव गोस्वामी जो उनको सुनाए थे वही है श्रीमद् भागवतम। जिस ज्ञान उन्होंने अपना पिता व्यासदेव से प्राप्त हुए थे, तो उस ज्ञान को ही उन्होंने प्रदान किए थे श्रील परीक्षित महाराज को, वो है श्रीमद् भागवतम। तो सुखदेव गोस्वामी जब श्रीमद् भागवतम सुनाया, या सुखदेव गोस्वामी के पास श्रीमद् भागवतम सुनने के पश्चात परीक्षित महाराज का हृदय में शुद्ध भक्ति का प्रकाश हुआ। श्रवण करते ही भगवान के बारे में सुनने, 7 दिन श्रवण करने के पश्चात उनका मन शुद्ध भक्ति में मग्न हो गया था। उस समय उनकी माँ उत्तरा उनके पास आकर पूछा, पुत्र जिस ज्ञान तुम्हारे गुरुदेव से प्राप्त हुए हो, उस ज्ञान मुझे भी प्रदान करो। तब परीक्षित महाराज ने उनकी माता उत्तरा को जो सुनाए थे वही है बृहद भागवतम। अर्थात ये श्रीमद् भागवतम सुखदेव गोस्वामी के पास सुनने के पश्चात परीक्षित महाराज जो समझे थे उसका ही वर्णन वो उनकी माता के पास सुनाए थे। तो आप देख रहे हैं श्रीमद् भागवतम के साथ बृहद भागवतम ऋतम का संपर्क कैसे है। परीक्षित महाराज ने वर्णन करने लगा कि एक समय प्रयाग में माघ महीना में जब वहां साधुओं का समागम हुआ था, तो उन्होंने एक दूसरे को प्रशंसा करने लगा कि आप हैं भगवान के सर्वश्रेष्ठ कृपा प्राप्त, कृपा पात्र, आप ही भगवान का कृपा प्राप्त हुए हैं। भक्त जो हैं वो अपना महिमा सुनना नहीं चाहते हैं, अपना प्रशंसा नहीं सुनना चाहते हैं, वे दूसरे को महिमा वर्णन करते हैं। आप ही हैं श्रेष्ठ भक्त, आप ही के पास, आप ही भगवान को कृपा प्राप्त हुए हैं, आप ही के ऊपर भगवान का कृपा का वर्षण हो रहा है। ऐसे उन्होंने अपने वापस में बातें कर रहे थे। तो उस वहां नारद मुनि उपस्थित थे। नारद मुनि का मन में तब ऐसी भावना हुआ, असल में कौन सबसे बड़ा भक्त है? भक्त लोग तो सभी को बोलते हैं कि आप ही श्रेष्ठ भक्त हैं, भक्त लोग दूसरे भक्तों को कहते हैं कि आप ही श्रेष्ठ भक्त हैं, परंतु असल में कौन श्रेष्ठ भक्त है? तब नारद मुनि ने देखा कि वहां एक ब्राह्मण आए एक ब्राह्मण ने वहां आकर एक मंदिर बनाकर अपना हाथ से ही एक मंदिर बनाया, और मंदिर का मतलब भगवान का पूजा स्थली बनाया प्रयाग के तट पर, प्रयाग में गंगा जमुना के संगम के तट पर, और वहाँ भगवान को प्रतिष्ठा करके शालग्राम, अपना शालग्राम को प्रतिष्ठा करके बहुत सुंदर भाव से भगवान को अर्चन किया, पूजन किया, बहुत सारे भोग और बहुत सारे उपचार लेकर भगवान को पूजा करके, पूजा करने के पश्चात वो जो भोग उस ब्राह्मण और वैष्णवों को खिलाया, और तत्पश्चात अपने परिवार के साथ खाए, और इतना सुंदर रूप से, इतना सुंदर भाव से, इतना भक्ति के साथ उन्होंने भगवान का ऐसे सेवा किया और भगवान का भक्तों का सेवा किया। ये देखने के पश्चात नारद मुनि ने सोचा कि यही भगवान का श्रेष्ठ भक्त है, भगवान का कृपा इनको ही मिला है, क्योंकि भक्ति का मतलब होता है भगवान का कृपा। भक्ति का विचार हम बाहर से नहीं कर पाते हैं, कर सकते हैं। भक्त कौन है, किनका किसका भक्ति सबसे अधिक है, सबसे गहरा है, ये हम बाहर से नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि बाहर के जो वैभव या बाहर के जो रूप, ये सारे देखकर हम भक्ति का विचार नहीं कर सकते हैं। भक्ति का विचार कैसे होता है, भक्ति का विचार होता है कि भगवान के कृपा के माध्यम। भक्ति का मतलब है भगवान का कृपा प्राप्ति। तो इसीलिए नारद मुनि ने सोचा कि इतना भक्ति जिसके पास है वो ही जरूर भगवान का कृपा प्राप्त हुए होंगे, आप ही श्रेष्ठ भक्त हैं। परंतु उस ब्राह्मण ने तब उनको बताया, नहीं, मैं भक्त नहीं हूं, मेरा भक्ति क्या है, मैं तो थोड़ा कुछ पूजा करता हूं, और पूजा करने के पश्चात भगवान का प्रसाद दूसरे को बांटने का कोशिश करता हूं, परंतु मेरा क्षमता कितना है, मैं एक दरिद्र ब्राह्मण हूं, और मैं ब्राह्मण होने के कारण ये मेरा कार्य है, ब्राह्मण का वृत्ति है भगवान का पूजन, तो मैं जो कर रहा हूं ये मैं मेरा कर्तव्य कर्म कर रहा हूं, इसमें भक्ति का क्या आप देख रहे हैं, भगवान का कृपा इसमें क्या है। तब उन्होंने बताया, देखिए असल भक्त है दक्षिण भारत में ये एक राजा है, उनका भक्त वो ही भगवान का सबसे श्रेष्ठ कृपा पात्र है। कृपा पात्र का शब्द का प्रयोग होता है हिंदी में, कृपा के पात्र, जिस व्यक्ति का कृपा मिला है, और तो वही है भगवत कृपा का श्रेष्ठ पात्र। उनका वैभव असीम है, उनका राज्य में बहुत सारे मंदिर बनाया है उन्होंने, और उस मंदिर में भगवान स्वयं विराजमान है, और भगवान को विराज होने के कारण वहां हर जगह वैभव और समृद्धि से पूर्ण है। राजा का वहां उन राजा का एकमात्र कर्तव्य है भगवत भक्ति का ही प्रचार करना और अपना प्रजा में इस भगवत भक्ति का विस्तार करना। उन्होंने शिक्षा दे रहे हैं सबको कैसे भगवान को सेवन, भगवान को पूजन और भगवान को भक्ति करना चाहिए। और भगवत भक्ति के कारण, भगवान की कृपा प्राप्ति के कारण उनका राज्य में सब कुछ बहुत सुंदर रूप से समृद्धशाली बन गए हैं। वहां उसका बहुत सुंदर वर्णन है कैसे राजा जब भगवान का भक्त होते हैं तो उस राज्य का स्थिति कैसा होता है। वर्णन ऐसे हुआ कि वहां जमीन में ये किए बिना ही वहां फसल होता है, मतलब जमीन में तो हम वी हैव टू प्लाउ द लैंड, प्लाउ प्लाउ का हिंदी क्या है, हल, हल चलाए बिना ही वहां फसल होता है। और वहां हर व्यक्ति जो का सब कुछ मन मन कामना भगवान का कृपा से पूर्ण बहुत सरल भाव से ही पूर्ण हो जाता है, कहां भी कोई अभाव नहीं है। और राजा इतना भक्त है कि हर समय भगवान को भक्ति का ही केवल उन्होंने चिंतन करते हैं और कोई विषय में उनका मन नहीं है, वही है श्रेष्ठ भक्त। मैं तो ब्राह्मण हूं, भगवान का पूजा करना भगवान का सेवा करना मेरा कर्तव्य है, परंतु वो राजा क्षत्रिय हैं, फिर भी उन्हें उन्होंने इतना सुंदर भाव से भगवान का भक्ति संपादन कर रहे हैं। तो ऐसे जब नारद मुनि को उन्होंने बोला तो नारद मुनि तब ब्राह्मण को अभिवादन करके संभ्रम प्रदान करके वहां उस राजा के पास गए। आप तो शायद जानते हैं कि नारद मुनि का एक क्षमता है कि नारद मुनि कहीं भी जा सकते हैं, सर्वगह कहीं भी जा सकते हैं और एकदम झट से ही चले जा सकते हैं। इस मुहूर्त में, इस समय नारद मुनि कहीं भी हो वहां से यहां आ सकते हैं और यहां से और कहीं भी जा सकते हैं, केवल भौतिक जगत में ही नहीं भगवत धाम में भी जा सकते हैं। नारद मुनि कभी वैकुंठ में जाते हैं, द्वारका में भगवान का वैभव देखते हैं। तो नारद मुनि द्वारका में जाते हैं, वृंदावन में भी कभी कभी जाते हैं, नारद मुनि हर जगह जा सकते हैं। तो झट से नारद मुनि दक्षिण भारत में चले गए। दक्षिण भारत में नारद मुनि वो राजा के पास गया, देखा वो राज्य का स्थिति कितना सुंदर है और राजा के उस राजा के राज्य में जो भगवान का जो मंदिर और मंदिर में जो भगवान का प्रकाश, वो देखते ही ऐसा मालूम होता है कि भगवान स्वयं वहां विराजमान है, स्वयं विराजमान है, केवल निश्चल रूप में वहां खड़े हुए हैं, परंतु भगवान ही है। राजा की भक्ति के कारण भगवान का मूर्ति मूर्त रूप ले लिया है। और ऐसे नारद मुनि जब राजा के पास जाकर उनका महिमा कीर्तन करना शुरू किया, उनका भक्ति का वर्णन करते हुए जब उन्होंने बताया कि वो राजा ही है भगवान का श्रेष्ठ कृपा पात्र, वो राजा ही है भगवान का श्रेष्ठ भक्त, तब राजा ने बहुत शर्माया। और जैसे मैं बोला था कि भक्त प्रशंसा नहीं सुन सकते हैं, ऐसा मालूम होता है कि इतना भारी है कि उसका सर झुक जाता है, उसको उसको संभाल नहीं सकते हैं। तो ऐसे बहुत संकट के कारण राजा का सर झुक गया और बहुत विनम्र भाव से नारद मुनि को चरण स्पर्श करके बताया, हम में क्या भक्ति आप देख रहे हैं और भक्ति करने का क्षमता भी मेरा क्या है, मैं तो एक मामूली इंसान हूं, मनुष्य हूं, मेरा आयु भी कितना साल का है और मेरा संपदा भी कितना है और क्या भी मैं कर सकता हूं। परंतु असल भक्त है, भगवान का असल भक्त, श्रेष्ठ भक्त है स्वर्गलोक के अधिवासियों ने, देवताओं ने, और उनमें से श्रेष्ठ है इंद्र, देवताओं का राजा। हमारा जीवन कितना है? अधिक से अधिक 100 साल। और हमारा क्षमता भी क्या है? परंतु इंद्र का स्थिति है 71 चतुर्युग, 73 द्वापर कली, मिलाकर एक दिव्य युग होता है। और वैसे 71 दिव्य युग का दिव्य युग है इंद्र का स्थिति, इंद्र का आयु। ये इंद्र ब्रह्मा के एक दिन में 14 इंद्र का आगमन होता है, और ब्रह्मा का एक दिन है 1000 चतुर्युग, 1000 चतुर्युग। तो 14 × 70 therefore is 1000 चतुर्युग, 1000 चतुर्युग, the day of Brahma is the duration of 14 Indras। तो आप देखिए एक चतुर्युग का स्थिति कितना है? एक चतुर्युग है 4,320,000 years। 4 million का मतलब 4,43,20,000 years, 43,20,000 years। देखिए ये है एक इंद्र का आयु, और उनका क्षमता भी कितना है? स्वर्गलोक में इंद्रदेव वहां जड़ा नहीं है, व्याधि नहीं है, अमृत पीने से उनका शरीर में कोई विकार नहीं होता है, जरा नहीं आता है, व्याधि नहीं आता है, वह मृत्यु नहीं है। और इंद्र का कितना सौभाग्य, भगवान स्वयं उनके छोटे भाई के रूप में जन्म लिए हैं। एक ही माता के गर्भ से भगवान उनके छोटे भाई के रूप में जन्म लिए हैं। जब उन्होंने देखा कि इंद्र का सभा में भगवान बैठे हुए हैं और उन्होंने सबको आशीर्वाद दे रहे हैं और इंद्र को रक्षा कर रहे हैं, और इंद्र भी सुना रहे हैं कैसे भगवान उनको रक्षा किया था, तो कुछ समय के बाद जब भगवान चले गए अपना स्थान पर, तो मतलब स्वर्गलोक में भगवान स्वयं विराजमान है, इस भौतिक जगत में भगवान विग्रह के रूप में विराजमान है, परंतु स्वर्गलोक में भगवान इंद्र के छोटे भाई के रूप में नित्य विराजमान है, और इंद्र का हाथ से उनका सेवा ग्रहण करते हैं प्रत्यक्ष रूप से। तो जब भगवान चले गए अपने स्थान पर, तब नारद मुनि ने इंद्र का प्रशंसा करना शुरू किया कि आप ही भगवान का श्रेष्ठ कृपा पात्र है। और तब इंद्र बहुत शर्माया और बोलने लगा, हम में भक्ति क्या है? मेरा भक्ति आप तो देख रहे हैं मेरा भक्ति, परंतु असल में भगवान हमें थोड़ा बहुत कृपा करके ऐसे सुजोग दे रहे हैं। मेरा तो कोई योग्यता नहीं है, परंतु जब हिरण्यकशिपु ने, जब बलि महाराज ने मेरा राज्य ले लिया था, तब भगवान आकर मेरा राज्य उद्धार किए थे। ये तो मेरा शर्म की बात है कि भगवान को आना पड़ा हमको हमारा भोग को स्थापन करने के लिए। और ऐसे अर्जुन, ऐसे इंद्र ने बताने लगा कैसे कितने रूप से उनका भक्ति का अभाव हुआ है। वृत्रासुर के बारे में बताया, तो ये हम डिटेल्स में नहीं जा रहा हूं क्योंकि समय आज कम है और ये विषय वस्तु बहुत विशाल है, तो हम संक्षेप में ही इसका वर्णन कर रहा हूं ताकि आपको ये इंट्रोडक्शन मिल जाए कि अगर बृहद भागवतमृतम आप पढ़ नहीं सके, फिर भी अगर श्रीमद् भागवतम किस उद्देश्य लेकर, किस भावना लेकर पाठ करना और भागवतम का सिद्धांत क्या है, ये सब थोड़ा सा उसका सूचना मैं कर रहा हूं, इंट्रोडक्शन मैं दे रहा हूं। तो इंद्र ने तब बताया, मैं तो भक्त नहीं हूं, परंतु आपका पिता ब्रह्मा जी ही है भगवान का श्रेष्ठ भक्त। तो ऐसे देखिए भक्त का मनोभाव कैसा होता है, इससे हमें पता चलता है। भक्त कभी अपने आप को श्रेष्ठ भक्त नहीं मानते हैं, और ये केवल विनम्रता या दैन्य भाव ही नहीं है। उनको पता है उनका भक्ति का स्तर कहाँ है, और उनका ऊपर, उनसे उत्तम, उनसे श्रेष्ठ भक्त कौन है। तो इंद्र ने बताया ब्रह्मा ही है श्रेष्ठ भक्त, जो आपका पिता है। और वैसे भगवान ब्रह्मा जी को कितने कृपा किए हैं, और असल में ब्रह्मा जी और भगवान में कोई अंतर नहीं है। तो ऐसे जब नारद मुनि को जब इंद्र ने बताया, तब नारद मुनि इंद्र को सम्मान करते हुए, प्रशंसा करते हुए वहां से गए सत्यलोक में, जहां ब्रह्मा जी विराजमान है। तो ब्रह्मा जी के पास जाकर उन्होंने बताने लगा कि वो ही भगवान का श्रेष्ठ भक्त है, और ये भी बताया कि ब्रह्मा जी और भगवान में कोई अंतर नहीं है। तो ये सुनते ही ब्रह्मा जी अपना आठ हाथ के द्वारा अपना आठ कान ऐसे बंद कर दिया, बोला ये तुम क्या कह रहे हो नारद, तुम्हारा बचपन से ही मैं कितनी बार मैं बताया कि ऐसा मत सोचना, भगवान और हम में कोई अंतर नहीं है, ये विचार सही नहीं है। यद्यपि भगवान का शक्ति के द्वारा आविष्ट होकर मैं रजोगुण को पालन कर रहा हूं, और भगवान के नाभि कमल से प्रत्यक्ष रूप से मेरा उत्पत्ति या जन्म हुआ है, फिर मैं तो केवल भगवान का दास हूं। तो ऐसे बताने के बाद ब्रह्मा जी ने बताया कि कितने बार भगवान के प्रति उनका जो आचरण वो सही नहीं था, भक्ति का क्या, भगवान के चरण में कितने बार कितने अपराध कर बैठे हैं, भगवान को कितना तकलीफ प्रदान किए हैं। जैसा उन्होंने बताया, जैसे मैं हिरण्यकशिपु को बर दिया था और उसके कारण हिरण्यकशिपु अमर बन के कितना कठिनाई कितना तकलीफ सबको दिया था, वैष्णव विद्वेषी बन गया था, भगवत विरोधी विद्वेषी नास्तिक बन गया था, और उसके लिए उसको संहार करने के लिए और भक्त अपना भक्तों को रक्षा करने के लिए भगवान को नृसिंहदेव के रूप में आना पड़ा। और देखो तुम कहते हो कि मैं भगवान का भक्त हूँ, देखो मैं भगवान का चरण में कितना अपराध कर बैठा था कितनी बार। एक बार अपना माया शक्ति के द्वारा मैं भगवान का गाय भगवान का सखा गोप सखा और गाय को चुराया था और उसके कारण भगवान का कितना तकलीफ हुआ। ये ऐसे मैं भगवान को पांच चरण कमलों में कितना अपराध कर बैठा था, परंतु भगवान इतना दयालु हैं कि मेरा सारे अपराध क्षमा कर दिया और आज तक भी हमें उनके पास रहने का सुयोग प्रदान किए हैं। और तुम कह रहे हो कि मैं भगवान का भक्त हूँ, ये कहकर ब्रह्मा जी बहुत विमर्श होकर वहाँ बैठ गए और तब बताने लगा, देखो भगवान का श्रेष्ठ भक्त है शिव जी, महादेव ही है भगवान का श्रेष्ठ भक्त, महादेव भगवान का अवतार है और भगवान का सखा भी है। महादेव के साथ शिव जी के साथ भगवान का कितना सुंदर संपर्क है, तो श्रेष्ठ भक्त तो वो ही है, शिव जी ही भगवान का श्रेष्ठ भक्त है। तो ऐसे जब नारद मुनि को बताया तो नारद मुनि तब शिव जी के दर्शन के लिए उनके पास कैलाश गए। तो ऐसे बृहद भागवतामृत में धीरे धीरे इसका वर्णन हुआ है। जैसे ये भगवत श्रीमद् बृहद भागवतम का ऐसे विभाग हुआ है, पूर्व अध्याय का सात, पूर्व विभाग का सात अध्याय है। ये सात अध्याय का प्रथम अध्याय है भौम अर्थात पृथ्वी का, और द्वितीय अध्याय में वर्णन हुआ है दिव्य स्वर्गलोक का, अर्थात स्वर्गलोक से लेकर सत्यलोक तक ब्रह्मा जी के स्थान, और उसके पश्चात तृतीय अध्याय है प्रपंचातीत अर्थात इस भौतिक जगत के परे। प्रपंचातीत, प्रपंच भौतिक जगत का और एक नाम है, प्रोपंच पंच महाभूत से इस स्थान का तैयारी हुआ है, है ना, इस भौतिक जगत, तो इसके कारण इस भौतिक जगत को प्रपंच कहा जाता है। और प्रपंचातीत मतलब इस भौतिक जगत के परे। एक तो है भौम अर्थात पृथ्वी, पृथ्वी के परे है स्वर्गलोक से लेकर, पृथ्वी के परे क्या है, भूलोक भूवरलोक स्वर्लोक महरलोक जनलोक तपलोक सत्यलोक, ये सप्त लोक हैं इस भौतिक जगत का, और नीचे का भी है और सात लोक, ऐसे चौदह भुवन चतुर्दश भुवनात्मक है ये ब्रह्मांड। एक एक ब्रह्मांड में चौदह भुवन रहता है, नीचे का सात और ऊपर का सात, और ये मिडल में जो है ऊपर और नीचे का जो बीच में जो है वो है भूर लोक जहां हम सब हैं, इसके परे हैं भूबर लोक, उसके परे हैं स्वर लोक स्वर्गलोक, स्वर्गलोक को परे हैं महर लोक, तत्पश्चात जनलोक, उसके बाद तपलोक और सत्यलोक। सत्यलोक में ही ब्रह्मा जी विराज करते हैं। तो ये सत्यलोक तक है ये दिव्य, भौम के ऊपर है दिव्य, देवताओं का स्थान, और उसके परे है प्रपंचातीत, भौतिक जगत के परे वो स्थान है शिवजी के स्थान। शिवजी के परे, शिवजी के बाद है वैकुंठ लोक, महेश धाम के परे है वैकुंठ लोक, वैकुंठ लोक के परे है, वैकुंठ लोक के ऊपर है गोलोक वृंदावन। तो आज हम दिव्य तक, द्वितीय अध्याय तक आज का विचार रखा था, ब्रह्मा जी तक, और कल से हम प्रपंचातीत का विचार करेंगे। प्रपंच का अर्थात भौतिक जगत का अतीत, भौतिक जगत के परे। प्रपंचात अर्थात ब्रह्मलोक तक भी भौतिक जगत है, परंतु ब्रह्मलोक के परे ब्रह्मा जी के स्थान के ऊपर है शिव जी के स्थान, शिव जी के स्थान के परे है वैकुंठ लोक, जिसका वर्णन बृहद भागवतामृत में कैसा हुआ है, गोलोक नामने निज धाम नि तले च तस्य देवी महेश हरि धाम श्रुतेषु तेषु। गोलोक है श्रेष्ठ, सबसे ऊपर है गोलोक आध्यात्मिक जगत में, उसके नीचे गोलोक नामनी निजो धाम ने, जो स्थान भगवान का अपना धाम है, उसके नीचे तले च तस्य, उसका नीचे देवी महेश हरिधाम सुतेषु तेषु। इस भौतिक जगत जो है ब्रह्मांड, ये देवी का स्थान है, देवी धाम। देवी इस धाम के ऊपर है महेश धाम, शिव जी का स्थान। महेश धाम के परे है वैकुंठ लोक। वैकुंठ के ऊपरी ऊपरी भाग में है अयोध्या और द्वारका, और द्वारका के भी परे है मथुरा मंडल, और मथुरा मंडल में है वृंदावन। ये वृंदावन ही है सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक स्थान। तो कल हम प्रपंचातीत से वर्णन शुरू करेंगे। तो अच्छा, इस सेमिनार के बारे में और मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि इस सेमिनार में मैं कुछ ग्रंथ नहीं लाया। लास्ट सेमिनार जो ब्रह्म संहिता हुआ था उसका ग्रंथ था, आप ग्रंथ पढ़ सकते थे, पढ़ के कुछ प्रिपरेशन कर भी सकते थे, बल्कि इस सेमिनार में उस अवसर भी नहीं मिलेगा, वो अवसर, उस अवसर नहीं मिलेगा। केवल सुन के और नोट लेकर याद रखना पड़ेगा, श्रवण ही सबसे अच्छा है। मैं तो जब सेमिनार देता हूँ तो मैं कभी मटेरियल्स नहीं देता, क्योंकि मटेरियल्स देने से क्या होता है, सब वो मटेरियल ही देखते रहेंगे, हमको सुनेगा नहीं। परंतु सही रूप से ग्रहण करने के लिए सुनना चाहिए। और मैं जो ऐसे आप ले रहे थे, हम देख रहे हैं आप में से आप नोट्स ले रहे हैं, सुनकर नोट्स लेना ही ग्रहण करने का सबसे अच्छा तरीका है। आज से 5000 साल पहले लिखने का पद्धति नहीं था, आप जरूर जानते होंगे, क्योंकि लिखने का जरूरत नहीं होता था, क्योंकि लिखते थे, जरूर लिखते थे, बल्कि कहां लिखते थे, यहां लिखते थे, ऐसे कलम से लिखने का जरूरत नहीं होता था। या अपना मेमोरी में लिख रहे थे, जैसे हम कंप्यूटर में लिख के रखते हैं, कंप्यूटर का मेमोरी है, वैसे ही उनका फोटोजेनिक मेमोरीज था, फोटोग्राफिक मेमोरी। एक बार सुनते थे बस याद रह जाता था। ये ब्राह्मण का एक गुण था, क्योंकि शास्त्र अध्ययन, पाठ करना, ये करना, आध्यात्मिक विषय का ज्ञान का चर्चा ब्राह्मण नहीं करते थे, और उनका मेधा इतना सुंदर था कि एक बार सुनने से याद रह जाता था। तो अब तो हमारा ये कलियुग के प्रभाव से हमारा क्षमता कम हो गए हैं, तो उसके कारण हमको लिखना पड़ता है और क्या क्या करना पड़ता है, टेप रिकॉर्डर से टेप भी करना होता है, और परंतु सबसे उत्तम है कि हम सुनकर उसको स्मरण करके, स्मरण में, स्मृति में उसको कलेक्ट कर लेते हैं। और उसके लिए नोट लेना भी जरूरी है, क्योंकि नोट लेने से, नोट क्लास के बाद नोट देखने से याद आ जाता है, नहीं तो हम तो भूल जाते हैं। कभी तो ऐसा होता है हम इस कान से सुनते हैं तो इस कान से निकल जाते हैं, परंतु इसको सुनने से, सुनने के पश्चात इसको मस्तिष्क में, अपना मेधा में उसको संचय करके रखना चाहिए। तो इस कारण हम आपको अनुरोध करेंगे कि आप लोग बहुत अच्छा ढंग से सुनकर नोट्स लिख लीजिएगा, नोट्स रखिए, और परीक्षा होगा 3 दिन का, 3 दिन के बाद हम परीक्षा दे देंगे, ये देंगे, क्वेश्चंस देंगे। वो क्वेश्चन का तैयारी आप घर में भी कर सकते हैं, घर में करके आप उसको दे सकते हैं, और उसके रिजल्ट हम बाद में बताएंगे, और इस परीक्षा का पुरस्कार भी मिलेगा जो बहुत अच्छा करेंगे, जिसका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा उसको पुरस्कार होगा, मिलेगा। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है किसी को? तो हम थोड़ा कीर्तन करते हैं, क्योंकि हरे नाम हरे नाम हरे नाम इव केवलम, कलौ नास्ते व नास्ते व नास्ते वगति रन्नाथ। हरि नाम ही इस कलियुग का एकमात्र उपाय है उद्धार प्राप्ति के लिए। जिस विचार हम कर रहे हैं बृहद भागवतम तक, वो समझने में कोई मुश्किल तो नहीं हो रहा है, कठिन नहीं है, और मेरा जो हिंदी है आप समझ रहे हैं।
Hare Rama, Hare Rama.
हरे राम Thank you. हरे कृष्णा। इस अब मुझे याद आया, बृहद भागवतमृतम के ग्रंथकार के बारे में मैं बताया नहीं। बृहद भागवतमृतम का रचना श्रील सनातन गोस्वामी ने किए हैं। श्रील सनातन गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु के एक महान भक्त थे। महाप्रभु के श्रेष्ठ भक्तों में से उन्होंने अन्यतम थे। और सनातन गोस्वामी बंगाल के नवाब हुसैन शाह का मंत्री थे, हुसैन शाह का प्रधानमंत्री थे सनातन गोस्वामी। पर उनका मंत्रित्व का पद त्याग कर उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्त बनकर वृंदावन में चले गए थे और वहाँ ही उन्होंने रहते थे। 6 गोस्वामी हैं वृंदावन के श्रेष्ठ, महाप्रभु के पार्षदों में से श्रेष्ठ गोस्वामियों ने हैं श्रील रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी और श्री जीव गोस्वामी। सनातन गोस्वामी ने बहुत सारे ग्रंथ रचना किए थे, उनमें से एक है ये बृहद भागवतमृतम। तो कल मैं सनातन गोस्वामी के बारे में भी बहुत थोड़ा कुछ बोलूँगा, क्योंकि सनातन गोस्वामी का जीवन जो है बहुत सुंदर, बहुत सुंदर उनका जीवन है। तो ये भी याद करना चाहिए कि वो कौन है, सनातन गोस्वामी कौन है जिन्होंने इतना सुंदर एक ग्रंथ का रचना किया है। हरे कृष्णा, बहुत धन्यवाद। गौर प्रेमानंदे हरि हरि श्रील प्रभुपाद की जय।
हरे कृष्ण, हम बहुत बहुत आभारी हैं परम श्रद्धेय श्रीमद भक्तिचारू स्वामी जी महाराज के कि उनके मुखारविंद से ये अमृतमय वाणी हमें सुनने को मिली। बोल श्रीमद भक्तिचारू स्वामी जी महाराज की, श्रील प्रभुपाद जी की जय।